पृष्ठ संख्या 141, कविता संख्या 24, कविता भाषा की रात, कविता बजट के अंधेरे में नींद का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। नारों के पीछे चीज़ों का नाटक बनाते हुए भीड़ में किसी बेशऊर आदमी का बहिरंग पुतला चिटक चिटक जल रहा है। उसकी राख फुटपाथ पर पड़े भिखारी के खाली कटोरे में गिर रही है। धुएं से ढके हुए आसमान के नीचे लगता है कि हर चीज़ झूठ है। आदमी, देश, आज़ादी और प्यार, सिर्फ नफ़रत सही है, नफ़रत सही है। व्याख्या, इस भाषा की रात शीर्षक 11 पृष्ठों की प्रायः लंबी कविता में माहौल, विशेषतः शासन तंत्र और राजनीति से उत्पन्न विसंगत अभावपूर्ण सामाजिक न्याय को नजरअंदाज करने वाली परिस्थितियों की व्यंजनात्मक ढंग से अभिव्यक्त हुई है, क्योंकि यह अधिकारपूर्ण माहौल राजनीतिज्ञों के भाषा शब्दों के हेर फेर का ही परिणाम है। इसलिए इसे भाषा की रात कहा गया है। राजनैतिक माहौल में बजट और उससे उत्पन्न प्रभावों और प्रश्नों को रचनाकार ने बड़ी तीक्ष्णता भरे स्वर में इस प्रकार रेखांकित किया है कि बजट के अंधेरे में, अर्थात बजट से उत्पन्न अभावपूर्ण विसंगत प्रभावों के कारण जनता अथवा संवेदनशील विचारक को नींद न आना, अर्थात उसका बेचैन होना स्वाभाविक ही है। इसी बात को लेखक ने अपने अंदाज में बजट के अंधेरे में नींद का सविनय अवज्ञा आंदोलन बताया है, पृष्ठ संख्या 142, क्योंकि बजट के कारण ही विरोध एवं आंदोलन का क्रम चलता है। ये आंदोलन अहिंसक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया में उभरा होने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया है, जिसमें गांधी की आंदोलन प्रक्रिया पर व्यंग्य ही है। रचनाकार कहता है कि ऐसे आंदोलनों में जो नारे उछाले जाते हैं और जो पुतले जलाए जाते हैं, उनमें अभिव्यक्ति आक्रोश बड़ा बेमानी और बेअसर सिद्ध होता है, क्योंकि इनमें उठाए गए नारों के पीछे महंगी होने वाली चीज़ों का नाटक भर रहता है और भीड़ में जो पुतला ढोया जाता है उसे लौटा कर कहीं नहीं ले जा सकते, इसलिए उसे जला दिया जाता है। ऐसा बहिरंग पुतला किसी बेशऊर आदमी मंत्री का ही होता है, जो ऐसे होते हुए नाटक को देखकर कतई दुखी नहीं होता। उस चिटक चिटक कर जलते हुए पुतले की राख से किसी का पेट नहीं भरता। उसकी राख के कण फुटपाथ पर बैठे भिखारी के कटोरे में ही पड़ते हैं, अर्थात भिखारी तक को भी ऐसे पुतले जलाए जाने से लाभ नहीं होता। अर्थात बजट के कारण होने वाली महंगाई रोकने के लिए ऐसे आंदोलनों से कोई लाभ नहीं होता, अपितु आंदोलनों की ऐसी प्रतिक्रिया और उनके परिणामों को देखकर जनमानस में एक विचित्र प्रकार की उदासीनता भर जाती है। लगता है कि ऐसे आंदोलनों से उठने वाला धुआं खुले आसमान के नीचे आच्छादित हो जाता है। तब लगता है कि यहाँ की हर चीज़ झूठ है। फरेब छल छदम भाषा में बड़े उत्साह से उद्धृत किए जाने वाले शब्द आदमी, देश, देश की आज़ादी, प्रेम और प्यार की बातें, ये सब झूठ हैं। इन शब्दों का प्रयोग अर्थ व्यवहार में भाषा की रात के ही व्यंजना कराता है। व्यवहार में देखने पर यदि कुछ सच दिखाई देता है तो वह नफरत शब्द है। नफरत शब्द ही सही अर्थों में अपना अर्थ नहीं खो पाया है, वही प्रभावशाली है। बाकी वह सभी शब्द जो उत्साह में दूसरों को उम्मीद देने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वह सब अपना प्रकाश यानी अर्थ खो चुके हैं। इसी अर्थ में आज भाषा अपने व्यवहार की रात से गुजर रही है। कविता, इस शहर में या उस शहर में, यानी कि मेरे या तुम्हारे शहर में, चंद चालाक लोगों ने, जिनकी नरभक्षी जीव ने पसीने का स्वाद चख लिया है, बहस के लिए भूख की जगह भाषा को रख दिया है। उन्हें मालूम है कि भूख से भागा हुआ आदमी भाषा की ओर जाएगा। उन्होंने समझ लिया है कि एक भुक्खड़ जब गुस्सा करेगा अपनी ही अंगुलियां चबाएगा, और अब वह लौटा रहे हैं उपाधियां और अलंकार, उत्तेजित भीड़ का कवच धारण करने के लिए। उनकी बनियानों के नीचे छिपी हुई खूनी कटार एक बार फिर परोपकारी कलम में तब्दील हो गई है, और लो, लिपियों के अंधे कुहराम में देखते ही देखते एक परिचित चेहरा किसी तत्सम शब्द की तरह अपरिचित हो गया है। व्याख्या: आम जनता के अभाव और कठिनाइयों के कारण एवं शोषक तंत्र की व्यंजना कराते हुए प्रस्तुत पंक्तियों में कवि चालाक लोगों की हिंसक वृत्तियों को उजागर करते हुए कहता है कि शहर चाहे मेरा हो या तुम्हारा, अर्थात आदमी जहाँ भी है, पृष्ठ संख्या 143, वहीं कुछ चालाक लोग भी होते हैं जो आदमी के श्रमजन्य पसीने की कमाई को चाटते रहते हैं। उनकी जीभ को उनके श्रमफल चाटने का स्वाद मालूम हो गया है, इसलिए बेहिचक हुए उनके गाढ़े पसीने की कमाई पर आश्रित बने रहते हैं। वे लोग चालाकी से भूख को बहस का मुद्दा नहीं बनने देते, अपितु भूख पर चर्चा करते समय भी वे भाषा प्रयोग को ही केंद्र में रखकर निरर्थक बहस में उलझे रहते हैं। ऐसा वह इसलिए करते हैं कि वह जान गए हैं कि भूख से भागकर आदमी भाषा का ही सहारा लेता है। वह भली प्रकार जानते हैं कि भूखा आदमी जब क्रोध आक्रोश में होता है तो अपनी ही अंगुलियां चबाता है, इसलिए वह भूखे को गुस्सा दिलाने वाली भाषा इस्तेमाल करते रहते हैं। वह इतने चालाक हैं कि लोगों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए अपनी प्राप्त उपाधियां, अलंकरण, तमगे आदि इसलिए लौटा रहे हैं जिससे उत्तेजित, क्रोधित भीड़ के वह शिकार ना हो। इन अलंकरणों को लौटाकर वह उत्तेजित भीड़ का कवच धारण कर लेते हैं, अर्थात भीड़ की तरह बनियान पहन लेते हैं जिससे वह पहचाने ना जा सकें। यही नहीं, उनकी बनियान के नीचे छुपी हुई कटार जब दिखाई देती है तो वह उसे परोपकारी कलम के रूप में तब्दील करके पेश करते हैं, और देखते ही देखते भीड़ के कोलाहल में, भाषा के अंधे कोहराम में जो दुष्ट परिचित चेहरा था वह तत्सम शब्द की तरह अपरिचित जैसा दिखने लगता है, अर्थात ये लोग बड़ी चालाकी से अपना चेहरा बदलने में माहिर हैं। कविता: एक तारा टूटता है उत्तर से दक्षिण की ओर, रोशनी की भागती हुई गूंज के सिरे से छूटकर गिरा है लुंड मुंड। चीखता हुआ आसमान जैसे आत्महत्या की कोशिश करता हुआ आदमी रस्सी टूटने से जमीन पर गिरा है। शहर दूसरे शहर की अफवाहों से घिरा है। बख्तरबंद गाड़ियों का दस्ता तुम्हारी बगल से अभी अभी गुजरा है। तीन मुंह वाली एक खौफनाक परछाई तुम्हारे सामने टांगे पसार कर बेझिझक लेट गई है। यह भाषा की रात, नंगी और ठंडी और काली, तीन मुंह वाली यह भाषा की रात है। तुम्हारी ऊब का चेहरा पहनकर हत्यारों ने फिर उसी जुबान में बोलना शुरू किया है जिसमें तुम्हारे बचपन की लोरियों की गंध है और जो तुम्हें बेहद पसंद है। व्याख्या: प्रस्तुत पंक्तियों में विभाषा फार्मूले को तीन मुंह वाली खौफनाक परछाई कहा है। इस फार्मूले के तहत ही दक्षिण में भाषा दंगे हुए थे। भाषा की रात शीर्षक के अंतर्गत भाषा को आधार बनाकर होने वाले दंगों पर चर्चा स्वाभाविक है, किंतु ऐसे दंगे भाषा राजनीति को उजागर ही कराए जाते हैं। एक ओर युद्ध, दूसरी ओर भाषाई दंगे, कैसी भयंकर विडंबना थी तब देश में। इसी स्थिति को केंद्रित करके कवि प्रतीकात्मक शैली में अपना मंतव्य व्यंजित कराना चाहता है कि एक तारा टूटता है जो उत्तर से दक्षिण की ओर टूटकर गिरा है। आसमान में टूटता हुआ तारा तीव्र गति से दौड़ती हुई रोशनी के सिरे से ही विच्छित होता है। उस तारे का टूटना इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है जैसे कोई लुंड मुंड आकृति पिंड आसमान से चीखता हुआ अथवा चीखता। पृष्ठ संख्या 144। वह आसमान, आत्महत्या की कोशिश करते हुए आदमी, रस्सी टूट जाने से जमीन पर आ गिरता हो। तारा टूटने की ऐसी घटनाओं के कारण एक शहर दूसरे शहर की अफवाहों से घिरा दिखाई देता है। आक्रमण युद्ध की ऐसी अफवाहों के कारण ही बख्तरबंद गाड़ियों का दस्ता बगल से गुजरता दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में, जबकि देश का माहौल और तरह का हो रहा होता है, उसी माहौल में तीन मुंह वाली खौफनाक परछाई लोगों के सामने टांगे पसार कर बेझिझक लेटती दिखाई देती है। यही भाषा की रात है, जहाँ शब्द काले काले दिखाई देते हैं। इस तीन मुंह वाली भाषा की रात का काला माहौल लंगा और ठंडा दिखाई देता है। तुम ऐसे माहौल को देखकर उबे हुए से दिखाई देते हो। तुम्हारी ऊब को देखकर तुम्हारे ऊब भरे चेहरे को ही हत्यारों ने पहन लिया है, और फिर उसी भाषा बोली में वे बोलने लगे हैं जो तुम्हारे बचपन की लोरियों की गंध से भरी हुई है और तुम जिन्हें बहुत पसंद करते हो, अर्थात तुम्हारी पसंद की कमजोरी जानकर और तुम्हारा ही उदास चेहरा ओढ़कर हत्यारों ने तुम्हारी ही भाषा बोलना शुरू कर दिया है। ऐसों को पहचान कर उनसे सावधान रहना बहुत आवश्यक है। कविता। उनके भीतर लाल फीतों वाली मौका परस्त बौनी भल मनसाहत दोबारा जगी है, और सहसा उनकी सहानुभूति तुम्हारे पसीने की बदबू से मेल खाने लगी है। यानी कि उन्होंने मान लिया है कि जो बीमार है उसे रोशनी में नंगा होने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सुरक्षित कर दिए हैं तुम्हारे संतोष के लिए पड़ोसी देशों की भुखमरी के किस्से, तुम्हारे गुस्से के लिए अखबार का आठवां कालम, और तुम्हारी ऊब के लिए वैष्णो जड़ तो टेढ़े कहिए कि नमकीन धुन। गरज यह कि तुम्हें पूरा जाम करने का पूरा इंतजाम है। जहाँ चीज़ें तुम्हारे शिनाख्त के अभाव में अपनी असलियत खो रही हैं, वहाँ मादरी जुबान में देश का चमकता हुआ नाम है। व्याख्या। दूसरों की बोली बोलकर रिझाने वाले चालाक हथियारों की चालाकी से सावधान करते हुए कवि उक्त प्रसंग को ही आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि चालाक लोगों के अंदर मौका परस्त भल मनसाहत फिर से जागृत हुई है। यह भल मनसाहत लाल फीताशाही का ही परिणाम है। अब फिर से अचानक उनकी सहानुभूति बड़ी सहृदय हो रही है। उनकी छदम सहृदयता का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उनकी सहानुभूति तुम्हारे पसीने की बदबू के बहुत निकट आकर उसी के रंग रूप और गंध से मेल खाने लगी है, अर्थात अब पसीने की समीपता के निकट आकर वे तुम्हें सहानुभूति दिखाते हैं। अब वे मानने लगे हैं कि जो बीमार है, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित है, उसे उजागर होने का पूरा अधिकार है, अर्थात शोषित शोषण की बात खुलेआम कह सकते हैं। उन्होंने इतना मान लेना ही काफी नहीं समझा, अपितु तुम्हें संतोष देने के लिए ही तुम्हारी ही स्थिति के भूखे लोग अन्य पड़ोसी देशों में भी हैं। वहाँ भी भूखे लोग हैं, यही नहीं अपनी भूख लाचारी को तुम खुलेआम अखबार में छाप कर भी बता सकते हो। इसके लिए अखबार का आठवां कालम तुम्हारी अभिव्यक्ति के लिए ही सुरक्षित कर दिया गया है, और पृष्ठ संख्या 145। जब तुम्हें ऊब का अनुभव हो तो ऊब उदासीनता दूर करने के लिए उन्होंने वैष्णो जड़ तो टेढ़े कहिए कि नमकीन आकर्षक धुन भी तुम्हारी सुख सुविधा के लिए जुटा रखी है। तात्पर्य यह है कि उस चालाक आदमी ने तुम्हारी गति को चारों ओर अवरुद्ध करने का पूरा प्रबंध कर दिया है। तुम्हारी स्थिति को जाम करने के लिए जो सुविधाएं तुम्हें जुटा दी गई हैं, उनके रहते तुम्हारी असलियत को पहचानना बड़ा कठिन है, क्योंकि चीज़ों की शिनाख्त तभी संभव है जब तुम उनकी गवाही दो। तुम्हारी गवाही के अभाव में चीज़ें अपनी असलियत खो ही देंगी, क्योंकि चीज़ों की असलियत गुम बना रखने के लिए ही मातृभाषा में बार बार देश नाम चमका चमका कर प्रस्तुत किया जा रहा है। देश के चमकदार नाम की चकाचौंध में चीज़ों की असलियत का खो जाना स्वाभाविक ही है। कविता। लेकिन तुम अपने आप में डूबे हुए चुपचाप खड़े हो, किताब में छपे पेड़ की तरह मौसम से बेखबर, और मैं तुम्हें वक्त में वापस खींच लाने की कोशिश में लगा हूँ। नहीं, मुझे इस तरह डबडबाई हुई आँखों से मत घूरो। मैं तुम्हारे ही कुनबे का आदमी हूँ, शरीफ हूँ, सगा हूँ। फिलहाल तुम्हें गलत जगह डालने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मगर साथ ही यह भी साफ कर दूं कि मेरा साहस राशन कार्ड में लिखे एक फालतू नाम की दलील से ज़्यादा नहीं है। व्याख्या: उस चालाक आदमी के तंत्र और षड्यंत्र को देखते समझते और सहते हुए भी तुम आम आदमी अपने आप में केंद्रित बने रहकर स्वयं में डूबे रहे हो, पर स्थिति का सामना करने के लिए तुम्हारे अंदर कोई प्रक्रिया नहीं होती। तुम्हारी अपने में डूबे रहकर बनी हुई मौन स्थिति किताब में छपे हुए उस पेड़ की तरह है, जो कहने को तो पेड़ है, देखने में पेड़ की आकृति है, परंतु उस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही नहीं, वह स्वयं भी मौसम पर प्रभाव डालने में असमर्थ होता है। इधर मेरा कवि रचनाकार का प्रयत्न तो देखो और समझो कि मैं तुम्हें निरंतर वक्त की धारा में बार बार खींच लाने के लिए कितना प्रयत्न बना रहा हूँ, कितना उत्सुक बना हुआ हूँ। मेरा यह प्रयत्न तुम्हारे द्वारा सब कुछ सहन करते हुए भी जड़ बनी हुई स्थिति को देखकर तुम्हें जागृत करके धारा में लाने के लिए है। तुम इतने निराश क्यों हो गए हो? मुझे इस प्रकार डूबी हुई एवं डबडबाई आँखों से मत देखो। मुझे आशंका की दृष्टि से देखने का कोई कारण नहीं है। मैं जनकवि, तुम्हारे ही हिस्से कुनबे का आदमी हूँ। मेरी ईमानदारी एवं अपने संबंधी होने पर तुम घबराहट में शंका की दृष्टि से देख रहे हो, क्योंकि इसी प्रकार तुम्हारे साथ छल होते रहे हैं। तुम्हें अपने साथ ले जाकर किसी गलत जगह पटक देने का मेरा कोई निहित मंतव्य नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट बता दूं कि मेरी हैसियत कोई बहुत बड़ी नहीं है, जो तुम्हें तुम्हारे संकटों से ऊपर, लेकिन एक बात स्पष्ट बता दूं कि मेरी हैसियत कोई बहुत बड़ी नहीं है, जो तुम्हें तुम्हारे संकटों से उपार कर सके। मेरी स्थिति और तुम्हारे समर्थन में दी जाने वाली मेरी दलील वैसी ही है, पृष्ठ संख्या 146, जैसे किसी के राशन कार्ड में एक फालतू सदस्य का नाम लिखा हो और दलील दी जाए कि यह आदमी इस समय यद्यपि यहाँ नहीं है, सबूत के लिए पर है वह अवश्य। अर्थात कवि एवं कविता कर्म सबका होते हुए भी हर समय सबके साथ नहीं रहता। कविता: हाँ, मैं भी भयभीत हूँ। व्यवस्था की खोह में हर तरफ बूढ़े और रक्त लोलुप मशालची घूम रहे हैं। इतिहास की ताजगी बनाए रखने के लिए नौजवान और सफल मौतों की टोह में उन्हें हमारी तलाश है। उन्होंने जलते हुए आदमी को झंडे की तरह उठा लिया है और उसे हमारे चेहरों पर गाड़ना चाहते हैं। उन्हें हमारी तलाश है। जमीन की जली हुई जिल्द पर खड़ा रोशनी सूंघने वाले जासूस कुत्तों का खतरनाक झुंड उनके इशारों का इंतजार कर रहा है। हर तरफ जागते रहो के करिश्मे गश्त कर रहे हैं। कल तक मुंह में जीभ डालकर बोलने वाला प्यारा पड़ोसी आज देशी दांतों की दोस्ती से डर रहा है। व्याख्या: वक्त प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए रचनाकार कवि और कवि कर्म के भय को रेखांकित करने का प्रयत्न कर रहा है। कवि कहता है कि भाई, यदि तुम यह पूछो कि तुम क्यों डरते हो, तब मेरा स्पष्ट उत्तर है कि मैं स्वयं भी इस व्यवस्था की खोह से भयभीत हूँ। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि मेरे चारों तरफ खून के प्यासे किंतु रूढ़ बूढ़े अनुभवी मशालची मुझ पर निगरानी रखते हुए मेरे चारों ओर घूम रहे हैं। ये रक्त लोलुप मशालची नौजवान रक्त के प्यासे हैं। ये नौजवान मौत की तलाश में इसलिए लगे हुए हैं जिससे ये सिद्ध कर सकें कि इतिहास में पुरानी घटनाएं ही अंकित नहीं हैं, ताजी घटनाएं भी इतिहास का अंग हैं, वह हम नौजवानों की खोज में लगे हुए हैं। तभी तो आवाज उठाने वाले जलते हुए उग्र नौजवान लोगों को वह झंडे की तरह ऊपर उठा लेते हैं। यही नहीं, आदमी लगे हुए टंगे हुए झंडे को वह हमारे चेहरों पर ही गाड़ देना चाहते हैं, जिससे बता सकें कि देखो ये लोग आदमी को कितनी बेरहमी से ऊपर टांगे हुए हैं। ऐसे ही खून के प्यासे हमारी तलाश में लगे रहते हैं। जमीन की ऊपरी परत पुस्तक की जिल्द की तरह जली पड़ी है, वहीं रोशनी को सूंघ कर अपराधी को ढूंढने के लिए जासूस कुत्तों का खतरनाक झुंड भी खड़ा हुआ है, जो उन रक्त लोलुप मसालचियों के इशारों की प्रतीक्षा में है कि कब इशारा हो और हम बोटी बोटी नोच कर खा जाएं। यही नहीं, वह खून के प्यासे मसालची ही जागते रहो के स्वर में गश्त भी लगा रहे हैं। ऐसी दमघोटू पर स्थिति में अब पड़ोसी भी बोलने का साहस नहीं दिखा पा रहा। वही पड़ोसी कल तक तो मुंह की अपनी जीव से ही बड़े प्यार से बोलता था, आज देशी दांतों की दोस्ती अर्थात अपने ही परिचितों की हंसी देखने से भी डर रहा है। वक्त की भयावहता को देखकर सगे संबंधी या परिचित अपना नाता निर्वाहित कर पाते हैं। पृष्ठ संख्या 147। यह भाषा की रात है। चीजें या तो झुक रही हैं या पीछे हट रही हैं। भाषा और भाषा की बीच की दरार में उत्तर और दक्षिण की तरफ फन पटकता हुआ एक दो मुहा विषधर रेंग रहा है, रोजी के नाम पर, रोटी के नाम पर जगह जगह जहर फेंक रहा है। और वह देखो कि अ है प्रांतीयता का चेहरा लगाए हुए कोई घुसपैठिया है, और वह देखो वहाँ वह तैश भरे चेहरे, वह मेरे देश के हम उम्र नौजवान जिनकी आँखों में रोजगार दफ्तर की नोन छही ईंटों का अक्ष झिलमिला रहा है। वह मेरे दोस्त किस तेजी से तोड़ना चाहते हैं भाषा का भ्रम, लेकिन रेल का डब्बा टूट रहा है। वह हाँपती हुई जंगली नदी के दहाने पर पहुंच गए हैं, जहाँ से बैलों के भित्ति चित्रों वाली पाषाणकालीन गुफा शुरू होती है, और शहर अपनी भूल चूक का अता पता पूछने वाला शहर बहुत पीछे छूट रहा है, दूर बहुत दूर, जहाँ आसमान अपने बौने हाथों से हिंदुस्तान की जमीन को नंगा कर रहा है। एक विदेशी मुद्रा वाला अवैतनिक दुभाषिया खिलखिला रहा है, और वो देखो वह निहाल तुंधियल कैसा मगन है, हुचुर हुचुर हंस रहा है। भाड़े की भीड़ में अंधे जुनून पर उसे कतई एतराज नहीं है। व्याख्या, यह भाषा की रात है, अर्थात शब्द अपना प्रकाश खो बैठे हैं, इसलिए शब्दों से उजाला नहीं अंधेरा निकल रहा है। फलतः चीजें पर स्थितियों के सामने या तो झुक रही हैं या फिर सामना करने से पीछे हट रही हैं। तभी तो भाषा और भाषा के बीच दरार पड़ रही है, और उस दरार में उत्तर और दक्षिण दो अलग खंड होकर आमना सामना करने को उतारू हैं। इसीलिए उन दोनों के बीच विरोध का फन पटकता हुआ दुमुहा विषधर रेंग रहा है, अर्थात दो मुंह वाले संदेह के सामने उत्तर और दक्षिण के बीच में भाषा के आधार पर गहरी दरार पैदा कर दी है। भाषा के नाम पर ही नहीं, भाषा की रात का जहरीला प्रभाव रोटी रोजी के नाम पर भी जगह जगह देखा जा सकता है। भाषा के शब्दों से निकलने वाला अर्थ प्रकाश व्यवहार से अब पूरी तरह गायब है। भाषा रोटी रोजी का ही सवाल नहीं, प्रांतीयता का चेहरा लगाए हुए घुसपैठिया भी अपना निहित स्वार्थ सिद्ध करने में प्रयत्नशील दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में नौजवान खून कुछ कर दिखाना चाहता है, वह भाषा के भ्रम को तोड़ देना चाहता है, परंतु उनके तैश भरे चेहरे, उनका आक्रोश केवल क्षणिक लगता है, क्योंकि रोजगार दफ्तर का चक्कर लगाते लगाते उनकी आंखों में जो लालिमा दिखाई दे रही है वह गुस्से के कारण नहीं है, अपितु तो रोजगार दफ्तर की लौन से छीड़ ईंटों की लालिमा प्रीतिमा का ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। कवि कहता है कि ए नौजवान दोस्त, तोड़ना तो चाहते हैं भाषा के भ्रम को, किंतु अपने एक्शन में विवेक न होने के कारण तोड़ने में लगे हैं रेल के डिब्बे। आक्रोश में भरे हुए ये नौजवान लोग आवेश में आकर दौड़ते हुए उसी तेजी से हांफते हुए बही जा रही जंगली नदी के किनारे पर पहुंच गए हैं, अर्थात आक्रोश के कारण हांफते दौड़ते रहने के कारण इनकी गति इन्हें जंगली नदी के तट पर पहुंचाने में समर्थ हो गई है। उस जंगली नदी के किनारे चलते हुए इन्हें कोई मार्ग नहीं मिलेगा, फलतः ये किसी गुफा में प्रवेश कर जाएंगे। वह गुफाएं बैलों के भित्ति चित्रों वाली पाषाणकालीन गुफाएं जेलें हैं, उनमें प्रवेश करके इन्हें क्या मिलेगा? वहां प्रकाश का कोई रास्ता नहीं है। अतः ये यह नहीं समझ पा रहे हैं कि भाषा की रात कितनी अंधेरी और भयानक है। वहां पहुंचे इन नौजवानों की इनकी भूल चूक बताने वाला कोई शहर नहीं मिलेगा जिससे पूछकर ये अपनी दिशा बदल सकें। भूल चूक बताने वाला शहर मनुष्य समुदाय बहुत पीछे छूट रहा है, बहुत पीछे रह गया है, इतना पीछे जहाँ ये दूर से ही देख पाएंगे कि पीछे का पृष्ठ संख्या 148 आसमान अपने बौने हाथों से हिंदुस्तान की जमीन को नंगा कर रहा है। यहाँ लगता है कि लेखक ने अंग्रेज शासनकाल में काले पानी की जेलों में बंद नौजवानों की व्यंजना कराई है, जहाँ की परिस्थिति एवं क्रूरता को देखकर विदेशी मुद्रा वाला दुभाषिया हंसता है, क्योंकि वह उनकी भाषा को नहीं समझता कि आज़ादी क्या होती है। ऐसे माहौल में पेटू स्वार्थी दलाल अपने पेट के आकार को देखकर प्रसन्न होने वाला तुंदियल हुचुर हुचुर करके खूब हंस रहा है। उसकी हंसी का कारण यह है कि प्रतिरोध करने के लिए जो भाड़े की भीड़ इकट्ठा की गई है उसका जुनून तो अंधा है, परंतु यह जुनून कुछ भी नहीं कर पाएगा। कहीं अंधी गुफा में यह अंधा जुनून नौजवानों को ले जाकर पटक देगा, जहां वे अपनी जिंदगी का शेष भाग अंधेरे में काटने के लिए मजबूर होंगे।